नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मतदान शुरू। 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन आज जयपुर में किया जा रहा है। अमरीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाएगा। दुनिया भर में तमिल भाषी लोग फसल का पर्व पोंगल मना रहे हैं। और न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 42 राष्ट्रमंडल देशों के 61 अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके साथ ही 4 अर्ध स्वायत्त देशों की संसदों के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर गहन चर्चा होगी, जिसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाओं को बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका भी शामिल है।
यह सम्मेलन समकालीन संसदीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचार विमर्श करेगा, जिसमें मजबूत लोकतांत्रिक संस्थानों को बनाए रखने में अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की भूमिका, संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमता AI का उपयोग, संसद सदस्यों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, संसद की सार्वजनिक समझ को बढ़ाने के लिए अभिनव कार्यनीतियां और मतदान से परे नागरिक भागीदारी शामिल है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल दिल्ली के लाल किले में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन मजबूत और अधिक प्रभावी संसदीय लोकतंत्रों के समर्थन में संवाद, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मंच का काम करेगा। स्थायी समिति में 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 सदस्यों की उपस्थिति में कोरम पूरा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काशी तमिल संगमम भारत की एकता में अनेकता की भावना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए एक लेख में बताया कि कार्यक्रम के दौरान वे सौराष्ट्र तमिल संगमम और काशी तमिल संगमम में शामिल हुए लोगों से मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों के विचारों ने उनके अंतःकरण को छू लिया है। जयपुर में आज 78वें सेना दिवस पर परेड का आयोजन किया जा रहा है। परेड की शुरुआत सुबह लगभग 10 बजे होगी। जगतपुरा के महल रोड पर सेना अपने अनुशासन, अपनी शक्ति और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष का ये आयोजन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पहली बार सेना दिवस परेड किसी पारंपरिक छावनी क्षेत्र से बाहर आयोजित की जा रही है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
यह आयोजन जनता को सेना की परंपराओं, अनुशासन और निरंतर विकसित हो रही क्षमताओं को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगा। परेड में भारतीय सेना की तकनीक आधारित शक्ति भी प्रदर्शित की जाएगी, जिसका महत्व युद्ध क्षेत्र में लगातार बढ़ता जा रहा है। परेड में अत्याधुनिक तकनीक, युद्ध क्षेत्र के नवाचार और सैनिकों के अटूट साहस और अनुशासन के संगम की झलक देखने को मिलेगी। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के गवाह बनने के लिए लोग जल्द सुबह से ही महल रोड स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचना शुरू हो गए थे, जिसमें विद्यार्थियों की भी बड़ी संख्या है। पूरे शहर में आज यातायात और सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से पंजाब और राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज अमृतसर में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के 50वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल जालंधर में डॉ बी आर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के लिए मतदान जारी है। 893 वार्डों की 2869 सीटों के लिए मतदान सवेरे 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा। 3,48,00,000 मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के चुनावी भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें मुंबई के 1,700 जबकि पुणे के 1,166 उम्मीदवार शामिल हैं। मतगणना कल होगी। एक रिपोर्ट।
महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के लिए 3,48,00,000 से अधिक मतदाता सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आज के चुनाव के लिए करीब 44,000 कंट्रोल यूनिट और लगभग 88,000 बैलेट यूनिट की व्यवस्था की गई है। लगभग 2,00,000 अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हैं। राज्य सरकार ने इन सभी नगर निगम क्षेत्रों में सभी कार्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है। इन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, खासतौर पर उन मतदान केंद्रों पर जिन्हें संवेदनशील घोषित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मतगणना कल होगी। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देते हुए IRCTC घोटाला मामले में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने कहा कि मुकदमा जारी रहेगा लेकिन गवाहों से जिरह अगले सप्ताह तक की जा सकती है। जब तक अदालत द्वारा पिता पुत्र द्वारा आरोपों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। दुनिया भर में तमिल भाषी लोग पोंगल का त्यौहार मना रहे हैं। पोंगल के स्थायी महीने को नई शुरूआत की तरह मनाया जाता है। ये तमिल पंचांग में वसंत ऋतु के प्रारंभ का भी प्रतीक है। विवाह, नए व्यवसाय और अन्य आयोजनों के लिए यह महीना शुभ माना जाता है। आज पोंगल के पावन अवसर पर फसल कटाई के बाद बचे हुए अनाज को सूर्य देव को अर्पित किए जाने की परंपरा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
तमिल कहावत है थाई पिरंथाल वांची पिरुक्कुम, अर्थात इस महीने का जन्म जीवन में नई राहें खोलता है। इसी आस्था और उल्लास के साथ तमिलनाडु में पोंगल का पर्व मनाया जा रहा है। पोंगल के अवसर पर लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ त्योहार मनाने के लिए अपने पैतृक गाँव की ओर लौटते हैं। गाँव की गलियाँ त्योहार के रंग में रंगी नजर आती है। घरों के सामने रंगोली सजाई जाती है जिसके बीच गन्ने से बना छोटा सा मंडप और नया मिट्टी का मटका रखा जाता है। मिट्टी के मटके को हल्दी के पौधों से सजाया जाता है और उसमें चावल, दूध और गुड़ से पोंगल पकाया जाता है। जैसे ही पोंगल उफनता है, घर के लोग उल्लास के साथ पोंगलो पोंगल का जय घोष करते हैं। इसका अर्थ है समृद्धि ही समृद्धि। इस दिन सूर्य देव को नई फसल अर्पित की जाती है और भविष्य के लिए बीजों का एक हिस्सा भी सुरक्षित रखा जाता है। घरों में नाश्ते में पोंगल, वड़ा, चटनी और सांभर विशेष रूप से बनाए जाते हैं। इस बीच त्योहार को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी चेन्नई से राज्य के विभिन्न हिस्सों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की है। राज्य सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को पोंगल उपहार के रूप में 3,000 रूपए और गन्ना भी प्रदान किया गया है। शहर के 20 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर लोक कलाकार ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा चेन्नई में आयोजित खाद्य महोत्सव ने भी पोंगल की खुशियों को और बढ़ा दिया है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
उत्तर प्रदेश में आज मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। भीषण शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु मकर संक्रांति के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मकर संक्रांति का पावन मुहूर्त शुरू हो जाने के बाद कल शाम से ही साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु राज्य की पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर प्रयागराज में लगभग 1.5 महीने तक चलने वाले माघ मेले का ये दूसरा बड़ा स्नान माना जाता है। आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। प्रशासन, रेलवे और परिवहन विभाग ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। माघ मेले के दौरान गंगा में साफ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कानपुर के गंगा बैराज से प्रतिदिन 8000 क्यूसेक जल छोड़ा जा रहा है। प्रयागराज में दोनों नदियों में गिरने वाली सभी 81 नालियों को नियंत्रित किया जा चुका है। कई आश्रमों में पारंपरिक खिचड़ी भोज भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा की और खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया, जिसके बाद यहाँ प्रसिद्ध खिचड़ी मेला शुरू हो गया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
उधर तेलंगाना में 3 दिवसीय मकर संक्रांति पर्व का दूसरा दिन धार्मिक उत्साह और पारंपरिक उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राज्य के कस्बे और गांवों में उत्सव की रौनक है। अमरीका ने पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए प्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाने की घोषणा की है। विदेश विभाग ने कहा है कि इन देशों के अप्रवासी अमरीका में अस्वीकार्य दरों पर कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेकर वहां आर्थिक रूप से भार बन जाते हैं। इससे पहले अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई भी देश लाखों लोगों को शरण देने और उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल का खर्चा वहन नहीं कर सकता। ईरान में जारी अशांति के कारण उसके हवाई क्षेत्र में आवाजाही बंद है। एयर इंडिया ने कहा है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली उड़ानें अब वैकल्पिक मार्गों से संचालित की जा रही हैं। इससे उड़ानों में देरी हो सकती है। न्यूजीलैंड ने कल रात राजकोट में भारत को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से हरा दिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। इस श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हमारे सहयोगी मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज अलग अलग मुद्दों को वरीयता दी गई है, लेकिन ईरान में बेकाबू होते हालात और वहां रह रहे भारतीयों को तुरंत वहां से निकालने की सलाह संबंधी समाचार और मौसम के मिजाज से जुड़ी खबरें लगभग सभी अखबारों ने मुख्यता से प्रकाशित की हैं। नवभारत टाइम्स ने ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समाचार मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, जंग की आहट में भारतीयों को सलाह, छोड़ दें ईरान। पत्र ने ईरान स्थित भारतीय दूतावास के फोन नंबर भी बॉक्स में प्रकाशित किए हैं, जिन पर संपर्क किया जा सकता है। पत्र ने सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर हुए पोंगल पर्व के आयोजन का समाचार भी सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी है, मौजूदा हालात के मद्देनजर भारतीय नागरिक तुरंत ईरान से बाहर निकलें। पत्र ने मकर संक्रांति के अवसर पर बुधवार को प्रयागराज में संगम पर स्नान करते हुए श्रद्धालुओं की तस्वीर छापी है।
और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी तमिल संगमम भारत की अनेकता में एकता की भावना का सम्मान करने वाला जीवंत उत्सव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रमंडल देशों के संसद अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में मतदान शुरू। 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन आज जयपुर में किया जा रहा है। अमरीका, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 75 देशों के लिए अप्रवासी वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाएगा और दुनिया भर में तमिल भाषी लोग फसल का पर्व पोंगल मना रहे हैं। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।